और उस समय कहते जी मुझे भूख लगी है, भोजन की सामग्री भोज्य सामग्री उपस्थित होने, खाद्य सामग्री उपस्थित होने पर कहते जी मुझे भूख नहीं, मुझे रुचि नहीं है, असमय बेसमय जब कभी वो हो जाता और कोई ऐसी चीज मांग लेते जो कि वहां पर उपस्थित न हो। किंतु कृष्ण बड़ी सहनशीलता के साथ में उनकी सेवा कर रहे थे। एक समय दुर्वासा जी बोले मुझे दही और गुड़े अभी अभी लाओ, सवेरे भोर में ही, भोर में करीब तड़के 6 बजे सूर्योदय के पहले के समय ही उन्होंने दही और गुड़ा मांगा। कृष्ण ने ये चीजें वहां पर उपस्थित की। दुर्वासा जी से सिखाने के पहले ही नहीं, इसे थोड़ा सा ग्रहण कर और अवशिष्ट को कृष्ण के सारे शरीर में मल दिया, ऊपर से नीचे तक चारों तरफ में लग दिया और बोले ये तुम अपना रथ मंगाओ, कृष्ण का रथ, वहां पर कृष्ण ने अपना रथ मंगाया, मैंने घोड़े की जगह में तुम लगो, और घोड़े की जगह में कृष्ण को लगा दिया और स्वयं रथ के ऊपर में बैठ गए और हाथ में चाबुक लेकर के और लगाम तक कृष्ण को नहीं दिया और आदेश देने लगे जैसे इधर चलो इधर चलो। सारी गोपियां, सारा रानीवास और सारी जतपुरी उसको देख रही थी, कृष्ण उनके आदेश के अनुसार में ठीक चला। कुछ देर के बाद में प्रसन्न होकर के कहा जी अब लौटा ले चलो रथ, फिर राजभवन की तरफ में आया है और वहां से उतर करके कृष्ण को गले से लगा लिया। बोले जैसे आपके समान और कोई जगत में कैसे सहिष्णु हो सकता है, यह असंभव है। मैं एक चाहता था जो तुम्हारे समस्त अंगों में दही और गुड़े का लेप कर दो, मंत्र पूत कर, जिसे तुम्हारे अंगों में कहीं भी कोई बाण और कोई भी अस्त्र शस्त्र न लगे। मैंने सब तो चलाकी से कर लिया किंतु पैरों के नीचे हमने तुमको दही और गुड़ा नहीं लगाया, इसलिए यहीं पर कुछ सावधान रहना, मुझे संदेह है कि यहीं पर यदि कुछ हो अन्यथा तुम्हारा शरीर सारा मैंने वज्र कर लिया और कोई भी बाण कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे अंगों पर प्रभाव नहीं कर सकता। अंत में हम लीला में देखते हैं कि जिस समय में बहली ने बाण मारा था उस समय में कृष्ण के ऐसा दिखलाया गया है कि वो बाणों में दुर्वासा ऋषि पहले से ये सब चीजों को जानते थे। कृष्ण ने अंतर्ध्यान के लिए ये सब चीजों का की व्यवस्था की थी, लीला संगोपन का यह एक उनका तरीका था, अन्यथा यदि विषों से विष खा करके नहीं कृष्ण के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, आग को खा लेते हैं, काली हृदय में विष से आग लगी हुई थी उसमें उन्होंने पान किया, उसका पानी उनका कुछ नहीं हुआ, भीष्म के बाणों से कुछ नहीं हुआ, तो पहले के बाण से होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। भीष्म कर्ण भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि के बाणों से भी कुछ नहीं हुआ तो इनका क्या बिगड़ सकता है। यह तो एक उनकी अंतर्ध्यान लीला के लिए उन्होंने ऐसा अवलंबन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण के लीला संगोपन के विषय में दुर्वासा जी का भी सहयोग था। सारी ऋषि द्वारका में उपस्थित हुए थे, यहाँ पर आजकल सोमनाथ है उसको क्या कहते हैं, कौन क्या क्या धाम कहते हैं उसको,
अच्छा उस समय हमने देखा
सारे ऋषि वहां पर उपस्थित हुए द्वारका में,
नासिक
नासिक वहां है, सभी सारे ऋषि वहां पर नारद देवल अशिति वशिष्ठ उसमें ये दुर्वासा ऋषि भी थे, वे लोग वहीं पर रहकर समुद्र में स्नान करते हैं, तीर्थ में स्नान कर वहां पर अपनी इष्ट गोष्ठी करते थे। एक दिन शाम को जो बहुत ही सुंदर थे, कृष्ण के लड़के श्याम, बहुत ही सुंदर थे, उनको स्त्री वेश में कुछ लड़कों ने, जो वंशियों के लड़कों ने सजाया और उनके पेट को ऊंचा कर कपड़ों से और उस पर एक तवा, लोहे का तवा बांध कर उसे स्त्री वेश में सुसज्जित कर इन ऋषियों के पास में ले आए और बोले, ये महात्मन आप लोग तो अंतर्जामी हैं और सर्वज्ञ हैं, ये लड़की अभी नवविवाहिता है और इसको गर्भ रहा है, हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग ये बतलाएं कि इसके गर्भ से लड़का या लड़की क्या संतान पैदा होगा। चार पांच राज पूछने पर ऋषियों को कुछ गुस्सा आ गया, उसमें दुर्वासा ऋषि हो सकता है, दुर्वासा ऋषि नहीं अभी संपा किया, बड़े इससे बोले दुर्वासा ऋषि गंभीरता से बोले, इसे लड़का होगा और न लड़की होगा, इसके पेट से एक मुसल पैदा होगा जो सारे जदवंशियों का ध्वंस विध्वंस कर देगा। इतने सुनते ही बच्चे डर गए और सचमुच उसका दूसरी जगह ले करके खोला पेट तो देखा एक मूसल उसके पेट से गिर पड़ा। ये लोग उग्रसेन के पास में पहुंचे और उग्रसेन से कहा, उग्रसेन महाराज उग्रसेन भी बड़े डर गए, उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया इसे रगड़ कर उस मूसल को जला दो और उसमें लोहे का जो शाम्ब है उस शाम्ब को रगड़ करके उसे चूर्ण बनाकर और समुद्र में बीच गंभीर में नौका में ले जा करके फेंक दो। शाम्ब उन्होंने मुसल को जला दिया और उसे लोहे के शाम्ब को निकालकर उसके रगड़ते 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 उसको एकदम धूल सा बना दिया, किंतु कुछ लोहे का अंश जिसको रगड़ रहे थे वो त्रिकोण में होता हुआ कुछ ऐसा रह गया जिसको हाथों से पकड़ा नहीं जा सका, उसको भी उसी चूर्ण के साथ में छोटा सा टुकड़ा और उसको उस कागज में तो किसी का पात्र में रख करके और समुद्र के बीच में नौका से जा करके छोड़ दिया। यही समुद्र के लहरियों से फिर से वो धुली गया
राख,
राख वो धुली स्वर्ण चूर्ण बतावा के किनारे पे आकर बहुत बड़ा भारी एरका, एरका मैंने सरकंडे का बन हुआ, बहुत लंबे लंबे बहुत नोकीले, उनके पत्तियां भी एकदम तलवार की धार से भी नोकीली हो, और वो शाम्ब का वो जो बचा हुआ जो टुकड़ा था उसको एक मछली ने खाया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा और वो जब उसे चीर कर देखा पेट में ये निकला, उसने अपने बाण की के नोक पर लगा लिया और वही जदवंशी लोग उसे अपशकुन देकर वहां पर आए थे, क्या नाम है, सोमनाथ जी का मंदिर जहां पर, वहीं पर आए अनिष्टों की शंका को दूर करने के लिए, वहां पर उन्होंने स्नान किया पंडारपित स्नान किया और बहुत दान दक्षिणा सब कुछ दिया, देने के बाद में मेरे नाम एक मधु मधु मने मदिरा उन्होंने पान और धीरे 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 खुश नहीं रहा और फिर एरके लेकर सरकंडे लेकर परस्पर परस्पर युद्ध करते हुए शादी मारी गई। क्यों बलदेव जी रहे, बलदेव जी ये दृश्य देखकर समुद्र के किनारे ध्यान लगाया, उनके शीर्ष शरीर से एक सर्प सफेद निकला और वो निकल करके चला गया उत्तर दिशा में, वो नित्य गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। कृष्ण वहीं पर पासी में बैठे थे, बहेलिए ने प्राण चलाया और इसके बाद में कृष्ण सशरीर ही गोलोक में पहुंचे, किंतु यहाँ पर पहलिए के बाण से मरे नहीं, ये जोग माया के प्रभाव से, महामाया के प्रभाव से साधारण लोगों ने देखा, ब्रह्मा और दूसरे दूसरे देव शंकर इत्यादि देवताओं ने उन्हें देखा, सिद्ध महर्षियों ने देखा जी कृष्ण सशरीर ही गोलोक वृंदावन को। इस तरह से दुर्वासा ऋषि जी का कृष्ण लीला में बहुत ही
योगदान
हम देखते हैं। मसीपुर भाषा अपने हजारों शिष्यों को लेकर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने उनका तक सत्कार किया, महर्षि कुछ दिनों तक दुर्योधन के राजभवन में ही ठहरे। भले बतलाई आज पाशा के बड़े अटपटे ऋषि थे, उनका आश्रम हजारों सौ सौ शख्स में भरा रहता, क्या वो चाहेंगे चाहते हैं किसी को पता नहीं रहता था। दुर्योधन के यहाँ रहते से कभी असमय में उनको भूख लग जाती और तुरंत खाने का प्रबंध करने के लिए करते, कभी भोजन उपस्थित हो जाने पर सहसा वहां से चली जाती, कभी बड़ी जोर से भूख लगती और थोड़ी देर के बाद में भोजन के उपस्थित हो जाने के बाद कहते मेरी रुचि नहीं है, मुझे भूख नहीं है। कभी रात में रात बिरात में ही उठ जाते और आवश्यक जो वस्तुएं सही रूप से नहीं मिल सकती उसी के लिए आदेश देते। दुर्योधन बड़ी सावधानी के साथ उनकी सारी उनकी सेवा से बड़ी सावधानी से उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहा। उसमें कर्ण शकुनी दुशासन इत्यादि का भी बहुत सहयोग रहता था, वो तो किसी प्रकार से ऋषि को संतुष्ट करना चाहते थे। दिनों के बाद ही दो चार दिन के बाद में ऋषि बड़े संतुष्ट हुए और दुर्योधन से कुछ वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन अब एक पता था
बोला सामने वाला फोन
बोल दो रखा दुर्योधन ने पहले से ही कर्ण आदि कर्ण दुशासन शकुन इत्यादि से मंत्रणा कर सलाह कर परामर्श कर ये ठीक कर रखा था जी वो क्या बार मांगना है। ऋषि के कहने पर उन्होंने उसने यह बार मांगा कि प्रभु जिस रूप में आप हमारे अतिथि हुए, आप हमारे बड़े भाई ऋषि महाराज के यहाँ भी उसी प्रकार से आतिथ्य ग्रहण करें, वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के सरल उदार और सब गुणों से संपन्न है और हमसे बड़े हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनके आतिथ्य ग्रहण करें। तो एक ये मेरी प्रार्थना है कि आप उनके यहाँ उस समय पहुँचे जबकि दुधिष्ठिर इत्यादि सारे भाई लोग उनका सारा परिवार खा चुका हो,
यहाँ तक कि द्रौपदी भी खाकर अपने रसोई के बर्तनों को माँच चुकी हूँ इस अवस्था में, इस अवस्था में आप वहाँ पर पहुँचकर पहुँच जाए, आप वहाँ पर पहुँचकर उसे भोजन के लिए पहुंचेंगे। ऋषि प्रसन्न तो हुए किंतु उन्हें साथ साथ में अम्बरीश महाराज का अम्बरीश महाराज जी का स्मरण आया है। भक्तों से लगना ठीक नहीं है किंतु वो बुद्धिस्ट को बर दे चुके थे, इसलिए अपने सारे शिष्य सहित सम्यक बन में महाराज युधिष्ठ के पास में पहुंचे। उस समय वो अपने वनवास 12 वर्ष का वनवास पूरा कर रहे थे, ठीक में उस समय पहुंचे जिसमें द्रौपदी उनका सारा परिवार भोजन कर चुका था। द्रौपदी भी परिवार भी सबको खिला पिला कर स्वयं भोजन कर और अपने बटलों को माज रखा था। युधिष्ठिर महाराज जी कभी अपनी आराधना से सूर्यदेव को प्रसन्न किया था और सूर्यदेव ने उन्हें एक बटलोई उनको दिया था और कहा था कि जब इस बटलोई को अपने पास रखो, इसमें जो रसोई बनेगी उससे सारा संसार भी तृप्त हो सकता है, कितने भी व्यक्ति खाए तो उसमें सब उसमें खाद्यान्न समाप्त नहीं होगा। सब लोगों के खाने के बाद में द्रौपदी जब इस बटलोई को माज करके अपने स्वयं खा करके इसको माजेगी, इसे माज करके रख देगी, उसके बाद में यह अन्न प्रदान नहीं करेगा, उस समय में खाद्यान्न नहीं पाया जाएगा। आज द्रौपदी ने भी सबको खिला आज द्रौपदी ने सबको खिला करके स्वयं ही अन्न ग्रहण करता प्रसाद पा चुकी थी और उसे माँच कर रख दिया था। इतने में दुर्गाशा जी वहाँ पर पहुँचे, अपने सज्जा शिष्यों के साथ में पहुँचे और बड़ी भूख लगी है ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिर से भोजन प्रस्तुत करने के लिए कहा और उनसे यह कहा कि मैं काशी में स्थित सरोवर में स्नान करने के लिए या गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से जल्दी से अपनी नित्य क्रिया स्नान एवं नित्य क्रिया से को समाप्त करके जल्दी ही यहाँ पर रखना, मैं आ रहा हूँ तो भोजन प्रस्तुत रखना। महाराज गुरुदेव से बड़ी चिंतित हुए। द्रौपदी से उन्होंने कहा मसी के लिए अभी भोजन प्रस्तुत करना है, क्या किया जाए। द्रौपदी ने कहा कि सब संकटों में आपके सखा श्री कृष्ण हमारी हम लोगों की सहायता करते हैं, इस संकट में उनके अतिरिक्त तो कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा प्राप्त द्रौपदी वहाँ पर भगवत चिंतन करती, कृष्ण का चिंतन करती है और उनका ध्यान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का आह्वान सुनकर विचलित हो गए और द्वारका से जब यहाँ पर उपस्थित हो गए, बोले सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे पहले खिलाओ। द्रौपदी द्रौपदी ने कहा जो प्रभु समाप्त कर देते एक मिनट लगे। द्रौपदी बोली हे करुणा करुणा अवतार करुणा करुणा वाला करुणा 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 ले प्रभु कृष्ण हम लोग आज बड़े संकट में फंसे हैं और इधर आपको भी भूख लगी। अभी महर्षि दुर्वासा यहाँ पर उपस्थित में है और भोजन के प्रस्तुत करने के लिए आ गए। महाराज अपने भाइयों के साथ में सभी भोजन कर चुके हैं, मैं भी भोजन कर अभी उठी हूँ। इतने में दुर्गाशा जी भोजन के लिए आदेश देकर के गए हैं। वो अभी तुरंत स्नान और इस नित्य क्रिया कर करके अभी पहुँचने वाले हैं। यदि उनको हम लोग भोजन नहीं दे सकते तो अभी हम लोगों का सर्वनाश अभी संपाद दे करके सर्वनाश कर देंगे। कृष्ण बोले ये तुमको अपनी सूझी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ इसके बाद में तुमको चिंता करेंगे। कहीं जैसे आप बटवरी भी तो शाम मात करके मैंने रख दी है हमारे यहाँ, तो मेरे पास तो कुछ खिलाने के लिए नहीं है। कृष्ण ने कहा जरा बटवरी को लाना। तो बटलोई लाने पर कृष्ण ने देखा, अच्छी तरह से सावधानी से देखा और उसके गले में फंसे हुए एक सांप को तुमके को लगा हुआ देखा। उन्होंने अपने नखों से उंगली के नखों से उसे उंगली से उसे निकाला और अपने मुख में देकर और उसे निगल गए और पानी मांग जल मांग कर उन्होंने कई भर पानी पिया। उन्होंने तृप्तोष्णी सारा जगत उसे तृप्त हो जाए इतना कहते हैं सब लोगों के पेट अनायासी भर गए। दुर्वासा स्नान कर रहे थे उसी समय उनके शिष्यों ने और उन्होंने अनुभव किया कि उनका पेट भर गया है और वे अब कुछ भी नहीं खा सकते। ये आखिर इसमें रहस्य क्या है जो कृष्ण नहीं समझ सके। इधर कृष्ण ने सहदेव जी को उनको बुलाने के लिए विलम्ब दे करके बुलाने के लिए भेजा, किंतु वे वहाँ पर गए तो देखा जी वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऋषि लोग सारे डर के मारे अम्बरीश महाराज जी के उस लीला को स्मरण कर अपनी घटना को स्मरण कर बड़े डर गए और कहीं भीम गदा लेकर के न पहुँच जाए, इसलिए वहाँ से भोर भुआ लोग इत्यादि को पार करते हुए उन लोग सप्त लोग को पहुंच महर्षि लोग को वहां पर उपस्थित हो भाग गए। इस प्रकार से उनका संकट टल गया और वो निश्चिंत हो गए। इसी प्रकार से एक समय की बात है, कुंती जी अभी बच्ची थी, ये उस समय कुंती भोज राजा के यहाँ पालित कन्या के रूप में रह रही थी। सब गुणों से अलंकृत थी, बड़ी सुंदरी थी। इस समय एक दिन दुर्वासा अपने कुछ शिष्यों के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए और महाराज भीष्म महाराज कुंती भोज के निकट अतिथि रहे। महाराज ने इस दुर्गाशाह जी की सेवा के लिए बेटी कुंती को नियुक्त किया। दुर्गाशाह और पटे तो ऋषि थे ही, वे कभी भूख बड़ी भूख लगी कहते थोड़ी देर के बाद में कहते हैं भूख नहीं है। कभी रात में रात में उठ जाते, वो चीज़ें जो उपलब्ध साजी नहीं है ऐसी चीज़ों की वो मांगते। कब क्या उनकी इच्छा होगी, कब क्या क्या मांगेंगे, इसको किसी कोई नहीं समझता था। किंतु बड़ी सहनशीलता के साथ में कुंती जी ने उनकी सेवा की।
अच्छा,
दिनों के बाद ही वो बड़े प्रसन्न हुए और कुंती को वर मांगने के लिए कहा, किंतु देवी कुंती कुमारी कुंती जी ने उनसे कहा, आखिर तो ये कृष्ण की बुआ और पांडवों की मैया है। उन्होंने कहा, हमें किसी भी लौकिक और परलौकिक वर की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस भगवान हमारे ऊपर में प्रसन्न रहे, बस ऐसा ही मैं चाहूँगा। यह सुनकर के ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और नहीं मांगने पर भी उनको कहा, मैं तुम्हें अथर्ववेद का यह मंत्र प्रदान करता हूँ, जिसे तुम देवताओं को आवाहन कर सकती है और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हुई सब कुछ उन लोग पूर्ण कर रहे हैं। कुंती ने और इसके बाद में चले गए। कुंती ने उसकी परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव वहां पर उपस्थित हुए और बोले, तुम्हें मैं एक पुत्र रत्न प्रदान करता हूँ। जब बच्चे वो चले गए, कुंती जी ने देखा उनके काम से एक पुत्र पैदा हुआ। यही तो उसी पुत्र को उन्होंने अपनी लोकलज्जा बचाने के लिए किसी निधि में धोल में उसको रख कर और उसे नदी में बहा दिया। यही यह पुत्र और कोई नहीं बल्कि यही पुत्र महाधनुर्धर महारथी ये कर्ण था, जो कि अर्जुन के हाथों से पीछे ये मारा गया। माता पिता का जन्म इत्यादि और तपस्या और बड़े क्रोधी स्वभाव के उग्र स्वभाव के थे, इसके बाद ही मूल में इस चीज को दे दिला। इनके लाखों शिष्य थे, लाखों की संख्या लाखों थी। दुर्वासा ने पूर्व कन्या पूर्व ऋषि के पूर्व के की कन्या कंदली से इन्होंने विवाह किया था। ये कंदली बड़ी उग्र स्वभाव की थी, इसलिए इसके पिता ने अर्थात उनके ससुर ने विवाह के समय में अनुरोध किया था कि इसके कम से कम आप 106 अपराधों को आप क्षमा करेंगे। उस समय उन्होंने वचन दिया, आचार्य 100 अपराध तक कुछ नहीं कहूंगा, किंतु कुटिल और उग्र स्वभाव वाली कंदली थोड़े दिन में 100 अपराध उनके चरणों में 100 अपराध उसने किए और उसके पश्चात उसकी सीमा अतिक्रम करने पर उन्होंने शाप प्रदान कर उसे भस्मीभूत कर दिया। द्वारका में भी रहते समय एक बार इन्होंने यादववंशिया एक का नांसा नाम की एक कन्या से भी इन्होंने विवाह किया था, किंतु कुछ दिनों के बाद में इसे भी छोड़कर के तपस्या करने के लिए चले गए। ये दोष दुर्वासा जी के उसके बाद कैसे हमारे मंदिर ये सामने हमको मिला, उनका जो लिखवाया है ना कागज पर उस ले लेंगे, उसके बाद में इसको ऐड कर देंगे, इसके बाद में तो फिर ये लिखो। इसके पास ही में जमुना के समीप जमुना के ऊपर में ही एक मल्लाहों का गांव है आजकल वर्तमान काल में, जो कि विष्णुपुर के नाम से अप्रसिद्ध है। पहले कुछ दिनों पहले इसका नाम विष्णुगंज था। विष्णुगंज का तात्पर्य ये भगवान विष्णु से इसका नाम प्रफंस होकर के इसका नाम विष्णुगंज हुआ। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंश हैं और दुर्वासा जी के भाई हैं।